क्या गर्व की बात है? कहीं पैदा होना गर्व की बात है क्या? हो सकता है गर्व की बात?
बिल्कुल नहीं।
जिस चीज में आपका कोई दखल ही नहीं है उसमें क्या गर्व? और किसी देश में या मुल्क में पैदा होना भी कोई गर्व की बात नहीं है। भारतीय होने पर क्या गर्व और पाकिस्तानी होने पर क्या गर्व? है कोई गर्व? गर्व की बात नहीं, कोई फख्र की बात है ये? लेकिन आजादी के बाद आज रिसोर्सेस पर किसका कब्जा होगा ये मुद्दा नहीं है। आजाद भारत में कौन गरीब रह जाएगा और कौन दौलत वाला बन जाएगा, कौन दौलत पर कब्जा कर लेगा, कौन 650 गांव जलवा देगा और कौन उस दौलत पर कब्जा कर लेगा, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है गर्व। गर्व कीजिए कि आप हिंदू हैं और उस गर्व के लिए आप इस आदमी को प्रधानमंत्री चुनिए। गर्व इस राजनीति का मुख्य में आ गया, केंद्र में आ गया। एक खास मजहब का होना, उसका जो प्राइड है वो आज की राजनीति का मुख्य मुद्दा है। कुछ लोग उस गर्व के लिए वोट देंगे और बाकी लोग उसके खिलाफ रहेंगे, लेकिन मूल में ये बात आएगी ही नहीं कि ये तो बात ही नहीं हुई थी आजादी के वक्त में, ये वादा नहीं था आजादी का। आजादी किससे ली हमने? अंग्रेजों से। और अंग्रेज इस मुल्क में किस लिए आए? यहां के रिसोर्सेस पर कब्जा करने के लिए। महात्मा गांधी ने आजादी के वक्त कहा था कि अंग्रेज भले ही रह जाए, अंग्रेजियत जारी है। और उनका अंग्रेजियत से मतलब था विकास का अंग्रेजी मॉडल। वो कहते थे ये जो विकास का अंग्रेजी मॉडल है, अगर भारत ने ये अपनाया तो भारत तबाह हो जाएगा, ये शैतानी मॉडल है। क्योंकि अंग्रेजों के बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन एक अंग्रेज ने लिखा था कि ये भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। वो लगातार अंग्रेजों का कंपनी आगे आगे चलती थी और फौज पीछे पीछे चलती थी। वो हर जगह जाते थे बिजनेस के लिए, फौज लेकर हमला करते थे, रिसोर्सेज पर कब्जा करते थे। गांधी ने कहा अंग्रेज तो दूसरे देशों पर हमला करते हैं और कब्जा करते हैं। आजादी के बाद अगर तुमने यही मॉडल अपनाया तो तुम किस पर हमला करोगे? क्योंकि ये मॉडल एक ही चीज पर जोर देता है कि विकसित वो है जो ज्यादा उपभोग करता है, जिसके पास ज्यादा है। और उसके लिए तुम दो चीजें करोगे, या तो प्रकृति का जरूरत से ज्यादा दोहन करोगे, उससे पर्यावरण का विनाश हो जाएगा, और या तुम दूसरे के हिस्सों के रिसोर्सेज छीनोगे और उसमें से युद्ध निकलेगा। गांधी ने कहा यह अंग्रेजों का मॉडल तुम्हें वॉर की तरफ ले जाएगा, इसमें से वायलेंस और हिंसा ही निकलेगी। और आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर अंडर कोई अंडरकवर पॉलिटिक्स चल रही है तो वो यही पॉलिटिक्स चल रही है कि इस भूभाग के भीतर के रिसोर्सेज पर किसका कब्जा होगा। चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ दंगे हों मुजफ्फरनगर के, चाहे वो कंधमाल के दंगे हों, चाहे वो बस्तर में आदिवासियों के 650 गांव को जला दिया जाना और 3.5 लाख आदिवासियों को डिस्प्लेस कर देना हो, मुजफ्फरनगर में भी गांव के गांव खाली करा लिए गए, उनकी जमीनों पर कब्जे हो गए हैं, कंधमाल में भी ईसाइयों को भगा दिया गया, उनकी सारी जमीनों पर कब्जे हो गए। पॉलिटिक्स यही है कि रिसोर्सेज पर कौन कब्जा कर लेगा, किसकी पॉलिटिक्स और किसकी पावर रहेगी जो उस कब्जे को परमानेंट बना देगा, कौन सी पॉलिटिकल पावर हमारे कब्जे को परमानेंट कर सकती है। पॉलिटिक्स वही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको इस सारी पॉलिटिक्स से बिल्कुल काट कर रखा जाता है। एक साजिश के तहत नौजवानों के लिए मुद्दे हैं कि आप 2020
बर्बाद की थी। आपके लिए मुख्य समस्या यह है कि 2020 में कौन सी टीम मैच जीते, यह है राष्ट्रीय समस्या।
यह राष्ट्रीय समस्या नहीं है कि आदिवासियों के गांव जलाए जा रहे हैं या किसान आत्महत्या कर रहे हैं या औरतों की क्या हालत है या स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम, ये नहीं है राष्ट्रीय समस्या। राष्ट्रीय समस्या है 2020, या फिर राष्ट्रीय समस्या है शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन। और अगर आप ये बातें करते हैं तो आप राष्ट्रभक्त हैं, और अगर आप आदिवासियों की बात करते हैं तो आप नौसेनाई हैं। अगर आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की आत्महत्या की बात कर रहे हैं, तो आप देशद्रोही हैं। और हमें जो निकाला गया वो यही इसीलिए निकाला गया कि हमने वो 650 गांव जलाने की बात पर शिकायत की, हमने उस पर एतराज किया, हमने वो सवाल उठाए कि अगर ये मुल्क सबका है और डेमोक्रेसी का मतलब अगर बराबरी और इंसाफ नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। तो हमें कहा गया कि ये देशद्रोह की बातें करते हैं आप, हमें निकाल दिया गया। मेरा ख्याल है मेरा वक्त पूरा हो गया है, हम लोग आगे सवाल जवाब होंगे तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे।
दोस्तों मेरा नाम भाषा है, मैं कुछ चीज़ें थोड़ा आपसे भी जानना चाहती हूँ क्योंकि पेशे से पत्रकार हूँ और हर समय ये लालच जरूर रहता है कि जहाँ से जाऊँ वहाँ से थोड़ी सी खबर मिले। कुछ संक्षेप में अगर आप ये बताएं कि आपकी नज़र में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था। सबको ये मालूम होगा कि अगस्त के अंत में कोई घटना हुई थी कव्वाल में, आपकी नजर में वो क्या घटना थी, आपके पास क्या खबर पहुंची है, फिर हम वहीं से बात शुरू करते हैं। अगर दो तीन साथी ये बताएं कि उनकी नजर में मुजफ्फरनगर में जो बवाल हुआ उसकी शुरुआत कहां से हुई, शायद वही हमारी शुरुआत होगी। जी
शुरुआत वो एक लड़के को मारने से हुई थी, वो शाहनवाज नाम था शायद उसका, और बेसिकली कहा यह गया था कि कुछ टीजिंग वगैरह का केस था वो, जिसको दो लड़कों ने आके दूसरे समुदाय के जो जाट थे उन्होंने आके उसको मारा, और फिर वहीं से वो शुरू हुई। उसके बाद महापंचायत हुई वहाँ पर जिसमें कुछ सीडीज डिस्ट्रीब्यूट करी गई वहाँ, तो उसी से बेसिकली, और फिर जो लोग वहाँ पर जा रहे थे उस महापंचायत में शामिल होने, उन पे जो मुस्लिम्स थे उन लोगों ने हमला किया वहाँ पे, ऐसा आया मतलब। और फिर उसके बाद ही कुछ लोग वहाँ पर इंजर्ड होकर पहुँचे पंचायत में, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम लोग को मारा गया है और हम लोग भी जाते हैं उनको मारते हैं। फिर तो रास्ते में जितने विलेजेस पड़े, जितने गांव पड़े, वो सब पे जो भी मिला सब आपस में मारपीट हुई, फिर उससे वो वायलेंस हुआ।
ये जहाँ तक मालूम है कि ऐसा हुआ था कि वहाँ पे किसी लड़की को छेड़ा गया था, उसके बाद ये वायलेंस हुआ।
कोई और कुछ और किसी के पास कुछ और जानकारी हो यहीं से शुरू करें जानकारी। दोस्तों देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी तक हमारे पास या आपके पास जो जानकारी है उससे ऐसा लगता है कि अगस्त के अंत में कुछ हुआ जिसकी परिणति 7 तारीख को महापंचायत हुई और फिर ये सारा बदल कटा। जितनी खबरें हम तक आप तक पहुंची हैं उनसे ऐसा लगता है कि कोई तत्कालिक घटना थी और वो घटना ये थी कि लड़की को छेड़ा गया, जैसा कि दोनों साथियों ने बताया। उसको छेड़ने से जो भावनाएं उत्तेजित की गई उसके बाद बड़ा पैमाना था छोटा पैमाना था उसको लेकर अलग अलग हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से ऐसा लगता है कि सारा मामला अगस्त से शुरू हुआ, उससे पहले का मामला हमारे सामने नहीं है। दोस्तों मैं बात थोड़ी दूसरे ढंग से शुरू करती हूँ। मेरी नज़र में ये सारा बवाल इसलिए घटा ही नहीं कि 27 तारीख को कोई घटना हुई या 28 तारीख को कोई घटना हुई या 7 तारीख को हुई। जो भी उन इलाकों में गया है, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग गए हैं, बहुत पत्रकार साथी गए हैं, बहुत संगठन के लोग गए हैं, हालांकि धीरे धीरे जा रहे हैं। जो राहत शिविरों में गया, आज की तारीख में जब हम आप बात कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में बैठ कर, इस जगह से महज 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर लोनी एक जगह है जो दिल्ली के सबसे पास का राहत शिविर है, जहां आज की तारीख में भी 5,000 मुसलमान एक छोटे से, बहुत छोटे से मदरसे में किसी तरह से घुस के अपनी जिंदगी चला रहा है। इसके अलावा 70,000 मुसलमान परिवार मुसलमान राहत शिविरों में है, जो राहत शिविरों से बाहर है उनका कोई आंकड़ा आज की तारीख में हमारे पास नहीं, क्योंकि राहत शिविर में वही गए हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी, उनके रिश्तेदार इतने संपन्न नहीं थे कि उनको ठहरा सके अपने पास। राहत शिविर में वही लोग गए हैं जिनके पास जो मूलतः गरीब थे, मूलतः दिहाड़ी मजदूरी वाले थे, धोबी थे, जुलाए थे, आदि इत्यादि तमाम छोटे वाले छोटे काम में जो जुड़े हुए थे, जबकि जो मुजफ्फरनगर का पूरा इलाका है यहाँ अपेक्षाकृत जो मुसलमान हैं वो संपन्न बताए जाते हैं। इसका मतलब कि उन मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक होगी जो रिश्तेदारों नातेदारों किराए के घरों में रह रहे होंगे आज की तारीख। तकरीबन 162 गांव के 162 विलेजेस के मुसलमान इस समय भागे हुए हैं। 5 गांव पूरी तरह से निस्तनबूत हैं, जब हम आप बात कर रहे हैं जहां पर एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रह रहा, चाहे वो लिसाड़ हो, फुगाना हो, लाख हो, इस तरह के जो 5 गांव हैं जहां पे घर जलाए गए। ऐसे में सबसे पहले जो दिमाग में सवाल आता है वो आना चाहिए जो भी जमहूरियत को बचाना चाहते हैं उनके दिमाग में, कि क्या ये महज एक वाकया हो सकता है कि जिसमें इतनी आग फैला दी हो और इतनी अंधाधुन आग फैला दी हो, इतनी तैयारी सबके पास रही हो। तो अगर आप इन राहत शिविरों में जाइए, थोड़ी सी तफ्तीश कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यह तैयारी पिछले एक साल में बहुत कॉन्सोलिडेटेड वे में मूव कर रहा है, बहुत कॉन्सोलिडेटेड वे। जितने राहत शिविरों या गांव में अगर आप जाएंगे वहां पे दोनों पक्षों से आप बात करेंगे, हालांकि दूसरा पक्ष ये कहेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। जैसे लिसाड़ में जब मैं गई, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव गांव बताया जाता है, जहां तकरीबन अकॉर्डिंग टू जो दूसरा समुदाय है जाट, उसके सरपंच के अनुसार सिर्फ 100 घर जले, और उनका वर्जन है कि 100 घर सिर्फ 15 मिनट में जल गए, एक भी कोई कत्ल नहीं हुआ। दूसरी पक्ष का कहना है कि 14 कत्ल हुए वहां पर। तो वहाँ एक साइड बताने की कोशिश कर रहा है कि 15 मिनट के अंदर, ध्यान दीजिए जो ऑफिशियल वर्जन है, 15 मिनट के अंदर एक गांव में 100 घर ऐसे जले हैं कि उनमें कभी कोई जिंदगी में रह नहीं सकता, यानी कि पूरे जल के भस्म हो गए, बस नीचे गिरी हुई। यही हाल तमाम और गांव का। मेरा जो आप लोगों से जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि हमें किसी भी घटना का, क्योंकि ये घटना जो है यही रुकने वाली नहीं, जैसे मेहताब और बाकी साथियों ने रखा, यह घटना न सिर्फ यहाँ की है और न सिर्फ यहाँ रुकने वाली है। जैसा कि जितने लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों जो मेरठ में अभी परसों हुआ, उससे ये सबको जो भी पढ़ने लिखने वाला तबका है उसको ये अंदाज़ा हो गया कि ये आग अभी सुलग रही और फैलेगी ज़्यादा। तो सवाल ये उठता है कि आग क्यों लगी आग या क्यों लगाई गई, या इसकी तैयारी में कौन लोग थे। आज ज़रूरत मुझे लग रहा है, जब उन्होंने भी कहा कि हम आज जो एक सिविल सोसाइटी के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, जमहूरियत पसंद इंसान के तौर पर जो हमें सोचना है कि यह अगर आग लगाई जा रही है तो यह आग लगाने का मकसद क्या है और आग की पैटर्न क्या है। यह आग एक ही पैटर्न में सब जगह फैल रही है या अलग ढंग से फैल रही है। दोस्तों ये जो बेल्ट है पूरी, इस बेल्ट में अगर थोड़ा सा मिट्टी को रेड़िए या थोड़ी से लोगों से बात करिए तो लोग बताते हैं कि पिछले 8 महीनों से, विशेषकर सब लोग बोलेंगे कि पिछले 8 महीनों से, SHO से बात करिए तो भी वो कहेगा, अगर वो SHO बचा हुआ है, क्योंकि अभी सब जगह SHO बदले हुए हैं, कुछ कुछ जो SHO हैं या पुलिस थानेदार हैं वो वापस घूम फिर के आसपास के इलाकों में तो बताएंगे। अगर आप वहाँ पर फाइलें भी पलटिए तो पता चलेगा कि पिछले साल अगर कुछ साथियों को यहाँ याद होगा कि देवबन से कुछ बच्चे पढ़ के लौट रहे थे और उनकी पिटाई का मामला हुआ था और उस समय थोड़ा सा हंगामा हुआ। कुछ जो दोस्त और उत्तर प्रदेश पर निगाह रखे होंगे या उनके दोस्त वहाँ होंगे या परिजन होंगे, उनको ये पता होगा कि पिछले कुछ समय से कम 8 महीने से घटनाएं छोटी छोटी ही सही रिपोर्ट हो रही थी कि तबलीगी जमात के लोगों को पीटा जा रहा था, उनकी दाढ़ी खींची जा रही थी, दाढ़ी काटी जा रही थी, ट्रेन में उनके साथ बदसलूकी हो रही थी। ये तमाम घटनाएं इस पूरे जोन में, जिस जोन की हम बात कर रहे हैं, जो जोन आज जला है वहां की बात, और इस तरह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक दरार धीरे धीरे फैलाई जा रही है। क्योंकि ये जो इलाका है ये वो इलाका है दोस्तों जहाँ जब पार्टीशन हुआ उस समय आग नहीं लगी, जिस समय बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ और पूरा राज्य और देश जला उस समय यह इलाका जला नहीं जैसा बाकी इलाका जला, तनाव रहा छिटपुट कांड हुए, इसलिए ये एक, क्योंकि आप जिस विभाग से जुड़े हुए हैं, जिस विभाग में आप अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए यह शोध का विषय होना चाहिए कि जो उस फसाद से बच गया इलाका, आखिर वह इस फसाद में कैसे घुसा, इतना तगड़ा कम्युनल डिवाइड कैसे हुआ। क्योंकि यह मजाक की बात नहीं है कि 10 या 15 दिन में जो वारदात होती है वह 70,000 मुसलमानों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर है। ये छोटी बात नहीं है, इसको हम तवज्जो मीडिया या बाकी समाज नहीं दे रहा। यह बहुत दुख की बात है कि 70,000 लोग अगर सड़क पर हैं, 70,000 लोग अगर एक जो सबसे बड़ा अभी एक रिलीफ कैंप चल रहा है, जिसके बारे में जिन लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे उन्होंने देखा होगा, खाली उसी में खबर आई, बाकी जगहों पर खबर नहीं आई उसकी। हम लोग गए थे तो वहाँ देखा था कि करीब 12,000 लोग जंगल के ज़मीन पर रह रहे हैं, खुला टेंट है। और उसमें जिस दिन मैं पहुंची थी रात में 1 बजे, 3 जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी वो डिलीवरी के समय मर गई थी, 4 लोगों को सांप काट चुका था, 15 लोगों को बिच्छू ने काटा, सिर्फ एक दिन की रिपोर्ट थी वहां पर जो हमने उतारी। तो सवाल है कि जो इस बड़े पैमाने के लोगों को बाहर निकाला गया है वहां पर, अगर मान लीजिए 10-15 हज़ार लोग सिर्फ जंगल की जमीन पर किसी तरह से रहन बसर कर रहे हैं, और वो जीवन निश्चित तौर पर कीड़े मकौड़ों के जीवन से भी बदतर है, तो उसको जीवन कहना या किसी तरह से जिंदा रखने की बात है। तो जो चीज सामने निकल के आ रही है कि इस इलाके को जलाने की कोशिश बहुत सुनियोजित ढंग से पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल और 8 महीने से बहुत स्ट्रांगली मूव कर रही है। और यहाँ पर हमें लिंक करने की जरूरत है कि कब अमित शाह उत्तर प्रदेश का प्रभार संभालते हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इनको दंगा कराने में PhD हासिल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप पढ़ने लिखने से ताका रखते हैं, इसलिए हमें चीज़ों को आइसोलेशन में देखने के बजाय लिंक करके देखने की ज़रूरत है कि आखिर अगर रिपोर्ट लिखाई गई फुकना थाना में 8 महीने पहले कि वहाँ 10-10 रुपए की पर्ची काटकर 500 के करीब तलवारें बांटी गई, वहाँ आई विटनेस है, शमीम है जो लिसाड़ गाँव का है, जो कि ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि जब वो भी अपना खरीदने गया था 5-6 दिन पहले, घटना 7 तारीख से पहले, तो वहाँ पे बाकी कम्युनिटी का जो दुकानदार था उसने कहा अच्छे से खा लो, खूब खा लो, तुम्हें हम काटेंगे ही, अभी मौज मना लो, तुम्हें काटेंगे ही। वो कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। दूसरा मामला कि जिस तरह का पैटर्न हिंसा का आप देखिए, तो आपको ये लगता है कि आप जिन लोगों ने गुजरात 2002, आप लोगों की सबकी उम्र कम है, 2002 का वाकया सुना हो गुजरात में जिस तरह से नरसंहार मचाया गया था, तो जो पैटर्न हिंसा का है, पैटर्न हिंसा का यहाँ पर आपको क्या लगेगा कि तलवारें कुछ समय पहले बांटी गई, 8 को रैली होती है भाजपा की, उसमें त्रिशूल बांटे जाते हैं। हिंसा के समय आपको क्या पता चलता है कि जितने गाँव से जो FIRs भी अब हो रही है धीरे धीरे, अच्छी बात यह है, उसमें पता चलता है कि जो वहाँ का मिट्टी का तेल का डीलर है वो तो हर ड्रम में मिट्टी का तेल डालता है, तेल सप्लाई करता है। श्यामली गांव में आप जाइए, श्यामली इलाका में जो तुलनात्मक रूप से शांत रहा, वहाँ लोग बताते हैं कि कुछ समय पहले एक बुलेरो गाड़ी से राशन बांटा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि शहर में कर्फ्यू लगने वाला है, अपने अपने घर में अनाज रखो, यानी कि लोगों को पता था कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होने की तैयारी। इसमें महज एक घटना, क्योंकि जो लोग मुजफ्फरनगर को जानते हैं, जो वरिष्ठ साथी भी यहाँ बैठे हैं जो जानते होंगे, वहाँ पर मारकाट, हत्या होनी, गोली चलनी, कत्ल होना, यह आम है, दिल्ली की तुलना में और ज़्यादा आम, वहाँ जरा जरा सी बात पे कत्ल होना, खुद वहाँ के लोग भी बताते हैं कि कत्ल होना, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं अभी, कव्वाल गांव की, जहाँ शहनवाज मारा गया और सचिन और गौरव मारे गए, दोनों ही पक्ष ये बोलते हैं कि यहाँ पर ये कोई अनयूजुअल घटना नहीं है, यह घटना ऐसी थी जो कि होती रहती है, छेड़खानी की घटनाएं होती हैं वो अलग बात है। और जो घटना की बात है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस घटना को लेकर सारा बवाल मचा, जिसे छेड़खानी या बहू बेटी की इज्जत का मामला बताया गया, वहां ना जाटों की तरफ से यानी गौरव और सचिन के परिवार की तरफ से या शहनवाज के परिवार की तरफ से, दोनों तरफ से जो FIR कराई गई, जो हमने देखी जाकर वहां पर, दोनों FIR में छेड़खानी का एक लाइन, एक लफ्ज नहीं लिखा हुआ, कहीं मीडिया में ये बात रिपोर्ट नहीं हुई कि दोनों पक्षों ने एक अपनी जो FIR कराई उस FIR में छेड़खानी की बात नहीं लिखी। दूसरी तरफ आइए, सबसे जो एक तो तैयारी ये हमें दिखाई देती है, दूसरी तरफ जो सवाल आज की तारीख में उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की धरती में ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा था, अगर ये बात हमें और आपको पता चल सकती है, आप जाएंगे तो आपको भी पता चलेगी, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार को पता नहीं चल रही थी? सरकार तो वहाँ अखिलेश की है, समाजवादी पार्टी की है, वहाँ के जो लोग हैं वो, उनको सबसे ज्यादा दुख इस बात का है, वो खुलकर बोलते भी हैं इस बात को लेकर कि हमें तो कहा जा रहा था कि हमने मुलायम की सरकार बनाई, सरकार मुसलमानों की, और सबसे ज्यादा कत्ल और सबसे ज्यादा जो जुर्म ढाया गया वो हम पे ढाया गया और हमें ही घर छोड़ने के लिए बाहर हुई। ऐसे में ये जो एक बात अभी सामने उभर कर आती है कि उत्तर प्रदेश सरकार, कई पत्रकारों ने भी लिखा कि अखिलेश यहाँ पर 6 तारीख को थे, 7 तारीख को सारा कत्लेआम शुरू हुआ और उस समय उनके पास खबरें आ रही थी, या उससे पहले जाइए, थोड़ा सा पहले जाइए, जब 84 कोसी परिक्रमा की बात हुई, सब साथियों को याद होगा, नहीं याद होगा तो आप गूगल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब 84 कोसी परिक्रमा का अनाउंसमेंट सिंघल करते हैं विश्व हिंदू परिषद के, तो सबसे पहले वो किससे मिलते हैं, उनको कौन बुलाया जाता है, मुलायम बुलाते हैं। मुलायम कहाँ बुलाते हैं, अखिलेश के घर पे बुलाते हैं, वहाँ पे उनकी खास दावत होती है और उसके बाद उस दावत से निकल ही कर वो अनाउंसमेंट करते हैं कि 84 कोसी परिक्रमा के लिए मुलायम भी तैयार है, और वो मुलायम से आग्रह करते हैं, मुलायम नहीं कहते लेकिन वो कहते हैं कि मुलायम तैयार हो गए हैं कि वो निगोशिएट करेंगे इस मसले पर। तो एक जो टाइप दिखाई दे रहा है, या एक जो छुपा हुआ, अब तो छुपा हुआ भी नहीं, अगर आप उस इलाके में जाइएगा तो छुपा हुआ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि तो हर एक विक्टिम ये बोलेगा कि हमने 100 बार फोन किया, पुलिस हमें बचाने के लिए नहीं आई, या लोग ये बोलेंगे कि पुलिस वहाँ थी और तब हुआ, इसलिए इस तरह के तमाम वाक्य। तो दूसरी तरफ मेरा जो अपना निजी मूल्यांकन है कि हो सकता है कि शुरुआती एक समझदारियों के ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन बढ़ाना है, जिसको आलम कह रहे हैं कि 2014 का चुनाव है और उसको लेके पोलराइज करना है, लेकिन फाइनली उस पोलराइजेशन में सपा कहीं से भी जीतती हुई या कुछ गेन करती हुई नजर नहीं आती उस इलाके में। जो तीसरी बात जिससे मैं अपनी बात खत्म करूंगी, जो सबसे खौफनाक है और जिसपे अब बात धीरे धीरे शुरू हुई है, वह महिलाओं पर हुए सेक्सुअल असॉल्ट की बात, जिसको लेकर बहुत आपराधिक चुप्पी मीडिया में बनी रही, जिसको लेकर आपराधिक चुप्पी सिविल सोसाइटी के इंटरवेंशन में भी शुरुआती दौर में बहुत बनी रही कि खबरें या केस कैसे रिकॉर्ड हों। आज कई साथी कोशिश कर रहे हैं कि जो सेक्सुअल असॉल्ट, क्योंकि इन तमाम जगहों पर जितने पत्रकार गए हैं, जो संवेदनशील पत्रकार हैं, उनको अगर कुछ समय वो लोग रुके हैं तो उनको लोगों ने खुद बताया है, हालांकि बहुत लंबा अंतर है और ये हर केस में होता है, सिर्फ सवाल मुजफ्फरनगर का नहीं है, गुजरात में भी सेक्सुअल असॉल्ट, गैंग रेप्स, ब्रू फिल्म्स की बात बाद में निकल के आई, कंधमाल में बाद में निकल के आई, ठीक उसी तरह से मुजफ्फरनगर के पूरे इलाके में आज की तारीख में 10-15 ही गैंग रेप्स रिपोर्टेड हुई, FIR की पर्ची अभी तक कटी नहीं है, मेडिकल किसी का हुआ नहीं है, क्योंकि वैसे भी लंबा पीरियड बहुत बीत गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर, जिनकी हम और आप यहाँ बैठकर कल्पना नहीं कर सकते, जिस तरह से महिलाएं वहाँ बता रही हैं। आज की तारीख में वहाँ बड़े पैमाने पर लड़कियाँ गायब हैं, बच्चियाँ गायब हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट है, और उनके बारे में उनके वालिदान ये बताते हैं कि किस तरह से उनको भीड़ उठा कर ले गई और उनके साथ क्या हुआ होगा, ये सारी आशंकाएं बनी हुई हैं। लेकिन सबसे दिक्कत तलब जो बात है कि जितने भी राहत शिविर हैं, सिर्फ एक को छोड़कर कोई भी स्टेट ऑपरेटेड नहीं, सारे के सारे या तो मदरसे में चल रहे हैं, या ईदगाह में चल रहे हैं, या खुली जमीन पर चल रहे हैं, और उसको कम्युनिटी रन कर रही है, जो कि सबसे तकलीफ वाली बात लगती है कि जो सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन बहुत स्ट्रांग है। सवाल है कि जो ये सेग्रीगेशन स्ट्रांग है, इसमें खाली आपके दिमाग में ये इम्प्रेशन जाता है कि कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी खड़ी हो रही है, ये एक फीलिंग बहुत तगड़ी पेनिट्रेट कर रही है, और उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास प्रशासन की तरफ से या बाकी जो राइट विंग फोर्सेज हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय है, और जिस तरह से अखिलेश सरकार ने जो दोषी, जो भी दोषी हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं, सारे लोग जो बैठे हैं, कि फेसबुक ऑपरेट करते हैं, फेसबुक पे किस तरह से नफरत इस इलाके में फैलाई गई, इसलिए मैंने वो सीधी और बाकी चीज़ों का जिक्र नहीं किया, लेकिन क्या वह जो नफरत फैलाई जा रही थी उसमें इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बाद में जो संगीत सोम के खिलाफ FIR भी हुई, लेकिन आप गिरफ्तारी देखिए कैसे होती है, गिरफ्तारी ऐसे होती है जैसे नेशनल हीरो आप पूरा उसको आत्मसमर्पण करने का मौका देती है, वो उससे पहले पूरी बेशर्मी के साथ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यूपी विधानसभा में जाता है, बॉम्ब का टॉक करता है, तमाम मीडिया में बैठ कर अपने अपने वर्णन, तो इतना हीरो बनने की छूट उसे दी जाती है और उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों मेरा खाली ये कहना है कि ये जो कम्युनल डिवाइड है इसे फैलाने की तैयारी बहुत तगड़ी है और उसमें सिर्फ यूपी ही नहीं चल रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं तमाम साथियों के पास फोन आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ और हिंसा हो सकती है, इसके बाद गाजियाबाद में इसी पैटर्न पे हिंसा करवाने की कोशिश होती है, साहिबाबाद में होती है, तो इससे हम कैसे अपने कई निपट सकते हैं या सच को सामने लाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में झूठ को जितना पीटा जा रहा है जितना परोसा जा रहा है उससे ऐसा लगता है जैसे जो जौली वाली घटना अभी साथी ने बताई कि वहाँ बड़े पैमाने पे जाटों का कत्लेआम हुआ, नदी में लाशें बहा दी गई, ट्रैक्टर बड़े पैमाने पे जल दिए गए, आज अगर आप अभी यहाँ से निकल के जौली जाएंगे तो आपको दो ट्रैक्टर चले हुए दिखाई देंगे, 16 ट्रैक्टर वहाँ बगल में खड़े हैं जिनको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो ये सारे जो झूठ है इनको हमें अपने अपने मोर्चे पे एज अ स्टूडेंट एज अ एक्टिविस्ट एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कम से कम ज्यादा से ज्यादा सच लोगों तक पहुँचाने की अगर हम कोशिश करें तो मुझे लगता है कि ये जो कम्युनल पूरा फासिज्म है इसको हम काउंटर कर सकते हैं।
बहुत बारीकी से और जो असियत है उसको सामने रखा है, जिस आपने एनालिसिस भी दी है और एक तरह से जो प्रद्युम्न ने कहा और जो इन्होंने कहा इसको कॉम्प्लीमेंट्री सोच करते हैं, क्योंकि आपने जो एक इमीडिएट सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल फोर्सेस है उन पर जोर दिया है और प्रद्युम्न ने उसको जोड़ा है अपने एनालिसिस में इस तरह के हादसे को पूरे नेशनल लेवल पे, और ये सिर्फ एक सपा की बात नहीं है, एक सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, ये एक तरह से पॉलिटिकल पावर जो आपने बताया कि जो एक सत्ता है वो किस तरह से रिसोर्सेज पे काबू करने के लिए क्या क्या कर रही है, और ये सिर्फ आज ही नहीं शुरू से हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा एक तरह से, जिसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम सतर्क हों और आगे का सोचें, सच को सामने लाएं जैसा आपने कहा, और अपने आप को तैयार करें कि इसको काउंटर कैसे किया जाए, मतलब ऐसा होता रहे तो ये तो हमारी भी कमज़ोरी समझी जाएगी। और अब डिस्कशन ओपन है, आप क्वेश्चंस पूछिए, बात करिए, कमेंट्स, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि खुल के जो भी मन में आए जो पूछना चाहे कहना चाहे।
जी बताएं। हमारे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब जो मीडिया के लिए वो तो काफी ज्यादा है, अभी 66A पे जो हुआ था सेक्शन 66A पे कितना बवाल हो गया, तो मैं डोंट यू थिंक मीडिया एक रोल प्ले कर सकता था कि ताकि इसको जल्द से जल्द दिखाए लोगों को ताकि ये फर्दर आगे बढ़ने से रुक जाए।
जी
मैम, एक ये मैम सेकंड क्वेश्चन है, कम्युनलिज्म पे बात हो रही है, तो कम्युनलिज्म जितना मैंने पढ़ा है अभी तक थोड़ा बहुत, तो मैंने देखा कि इट्स अ आइडियोलॉजी दैट सोशियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ टू कम्युनिटीज कैन नॉट बी सिमिलर, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि मतलब ठीक है इंडिया ऐसे चलता है ऐसा, तो व्हाट डू यू थिंक आपका इस पे मोड पे क्या कहना क्या है, बिकॉज़ यू आर फ्रॉम द जर्नलिज्म फील्ड, तो आप पे काफी सही होगा ना कि आप अगर इसको सही से एक्सप्लेन करके बता दें।
देखिए आपने जो कहा कि रोल ऑफ मीडिया निश्चित तौर पे इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों के सामने रखी, और मैं जहाँ भी रख रही हूँ सब लोग बहुत हैरान हो रहे हैं इस बात को। यहाँ तक कि जो मीडिया के संगी साथी हैं वो भी बहुत हैरान हैं इस बात को कि अच्छा ऐसा था, फिर बहू बेटी बचाओ का मामला कहाँ से आया। सवाल यह है कि जो मीडिया है और जो लोकल मीडिया है, अगर आप थोड़ा सा वेबसाइट पे जाके अगर आप देखें कि वहाँ का जो मीडिया था वो कैसे रिपोर्ट कर रहा था, वो रिपोर्ट उसकी रिपोर्टिंग इतनी बायस्ड है, 100% बायस्ड है, 100% उन्माद फैलाने वाली है। जैसा कि जो सीनियर साथी हैं वो जानते होंगे कि 92 में किस तरह की रिपोर्टिंग हुई थी, 92 में जब बाबरी मस्जिद के बाद कम्युनल टेंशन फ्लेयर अप हुआ था तो भी वहाँ पर लोकल रिपोर्टिंग इस तरह की थी कि इतने मारे गए, इतने उन्होंने काट दिए, जो कि आपके एथिक्स के खिलाफ है। तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ कि अगर ये सेंसेशन छोड़कर एक रियल बेस रिपोर्टिंग होती, जो आज खबरें आ रही हैं धीरे धीरे, आज धीरे धीरे सही लेकिन आज थोड़ा थोड़ा आ रही हैं इस बारे में, तो टेंशन कम किया सकता था। लेकिन दिक्कत है कि वहाँ हम एक पार्टी बन जाते हैं, हमें लगता है कि ये डिवाइड कम्युनल डिवाइड है और हमें एक साइड लेना है। ऐसा जब अगर मीडिया कर लेता है और लोकलाइज लेवल पर या नेशनल लेवल पर मीडिया कर लेता है, जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट का डिस्कोर्स, आज सारा डेवलपमेंट का डिस्कोर्स पूरा बायस डिस्कोर्स है ना, उसमें सारा आप दिखाते हैं कि एक ही तरह के डेवलपमेंट की बात करते हैं। जिस इलाके की मैं बात कर रही हूँ वहाँ का विधायक भी हुकम सिंह है जो कि बीजेपी का है, और वहाँ अगर आप जाएं मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि आप सोचेंगे कि दोबारा ज़िंदगी में उस सड़क पे आप नहीं गुजरें, क्योंकि इतनी खौफनाक सड़कें हैं कि आप वहाँ 10 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा नहीं चल सकते, जबकि पूरा इलाका ऐसे ऐसे गड्ढे हैं और रात में इतना। मैं कहती हूँ कि जो डेवलपमेंट की बात है वो एक ये, दूसरी बात आपने जो कही कि कम्युनलिज्म की बात, तो निश्चित तौर पे जो मैं आपसे रखना भी चाह रही हूँ कि ये इंटेंशन था, ये तैयारी थी, ये तैयारी संघ परिवार बीजेपी और बजरंग दल वीएचपी, जो लव जिहाद अगर आप देखें नेट पे तो जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ लव जिहाद है, जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ बहू बेटी बचाओ, या अभी जो लेटेस्ट नारा उन्होंने दिया कि बेटी बचाओ बहू लाओ, तो ये जो सारा नारे हैं या जो स्लोगन्स दिए गए वो इसीलिए क्योंकि उनको दिमाग में ये इम्प्रेशन था कि ये पूरी जाट बेल्ट है जो अपनी बहू बेटी इज्जत को लेकर बहुत कॉन्शियस है, इसलिए अगर उसको इस बेल्ट को कैप्चर करना है या इनरोड्स बनाने हैं। आप जानते हैं कि ये पूरा बेल्ट अजीत सिंह का बेल्ट माना जाता रहा था, जहाँ पर बीजेपी के उतने डीप इनरोड्स नहीं थे, वो आज की तारीख में वो डीप उस सेक्शन को उसने कम्युनलाइज करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए। तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल इंटेंशन से ही कम्युनलिज्म फैलता है, इतिहास ये बताता है, चाहे वो फासीवाद जर्मनी का हो, चाहे भारत में जो इस तरह का जो राइट विंग मूव है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है।
और पॉलिटिकल मैं कहना चाहूँगी कि आपने मीडिया की बात कही कि मीडिया ने क्यों नहीं ऐसा किया, असल में मीडिया भी एक कंस्ट्रक्ट है, मतलब उसको पैसिवली अगर हम लेंगे तो हम इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि सच क्यों नहीं दिखाया, पर द मीडिया इज ऑल्सो कंट्रोल्ड, इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू यू नो पावर्स दैट बी, एंड सो इट इज़ नॉट टू बी यू नो टेकन एज यू नो वन चैनल ऑफ ट्रूथ कमिंग टू यू। सो आई थिंक एज स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी वी हैव टू बी वेरी अवेयर दैट द मीडिया इज अ कंस्ट्रक्टेड थिंग एंड इट इज सब्जेक्ट टू ऑल काइंड ऑफ pressures and powers and temptations.
No, I totally agree with your point. The point is that कि जब अभी तीन चार like I mean last year की बात है, जब section 66 है Facebook पे when you post some racial comment whatever it is, तो अगर आप वो करते हो तो उसपे लेकिन इतना बवाल हुआ कि मतलब दो लड़कियों को मुंबई से जेल में ले आए जो भी था, लेकिन अगर वो हुआ मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो इतनी बड़ी बात है जिसमें लोगों का कत्ले हम मैसेकर हो रहा था अगर देखा जाए तो ये बात क्यों नहीं होती, जब तुम छोटी सी सेक्शन वाली बात को उठा के तो पूरे अखबारों की हेडलाइन तो बनती थी।
सप्रेशन भी होता है चीजों का कॉन्शियस
मैम, जिस लेवल का ये वॉयलेंस है उस लेवल की न्यूज़ है नहीं, तो आई जस्ट वांट टू आस्क इज द मीडिया नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट दिस।
तो बेसिकली उनके दिमाग में ये कंसर्न भी नहीं कि खबर है। आज की तारीख में अगर आप दिल्ली में बात करें तो अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया, अब धीरे धीरे रिपोर्टर्स जाने लग गए हैं वहाँ पे बहुत स्लोली, लेकिन अभी भी क्योंकि उनके लिए बहुत सेंसिटिव मामला है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा कि अगर तुम कहोगे कि 70,000 मुसलमान बाहर है तो ये कम्युनल राइट का ये भी इशू हो सकता है। मैंने कहा लेकिन सच तो ये है कि 70,000 मुसलमान घर से बाहर है, 10,000-12,000 मुसलमान को अगर मैं जंगल की ज़मीन पर सोते हुए देख रही हूँ तो मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करेगा कि मैं ये कहूँ कि वो 500 है या वो 600 है या 1000 है। और दूसरी बात, क्योंकि हमारी सारी रिपोर्टिंग अर्बन सेंट्रिक है, मेट्रो सेंट्रिक है। अभी हिमांशु यहाँ बैठे हैं, बताइए कितने लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि सोनी सोरी के साथ क्या हुआ। सोनी सोरी क्या नेशनल डिबेट का हिस्सा बनी? नहीं बनी, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास साइकी में ये बैठा हुआ है कि कोई अगर नक्सलाइट है, कोई अगर मुस्लिम है, तो ही कैन बी और शी कैन बी सब्जेक्टेड टू एनी बार्बरिक काइंड ऑफ वायलेंस, वट एवर इट टेक्स। कितने बच्चों को ये बात पता है कि जो हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट में मासूम बच्चे पकड़े गए थे, जब वो पकड़े गए थे तो हम सब ने उसकी फोटो छापी थी, मीडिया में दिखाया था, जब उसी कोर्ट ने उनको बिल्कुल बेकसूर साबित कर दिया, तो कितने लोगों ने उनकी फ़ोटो छापी कि बेकसूर है? कितने लोगों ने ये बताया कि इनके ऊपर पुलिस ने इतनी अट्रॉसिटी की है कि ये ज़िंदगी भर मर्द नहीं रह सकते? कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता? तो सवाल जो अभी आप कह रही हैं वो बहुत सही है कि जो मीडिया का पूरा लुक है वो एक बेसिकली मेट्रो अर्बन सेंट्रिक इश्यूज पर प्ले करने वाला है, तो ये एक एक जहन में हमारी दिक्कत रहती है। यस,
रिपब्लिक ऑफ विलेजेस, आपको शहर गांव में रहिए, आप गांव को डेवलप करिए और इंडिया डेवलप हो जाएगा। अम्बेडकर कहते थे शहर में आके रहना शुरू करिए, गांव इज अ स्पॉट फॉर ब्लैक मैजिक्स एंड मिसबिलीव्स। सर अब इस समाज के अंदर, 21वीं शताब्दी के अंदर भी अब जब गांव के अंदर ये चीज होती है कि दंगा भड़काने के लिए नेता की जरूरत नहीं पड़ती, दंगा उनके अंदर है, आपको बस रिकग्नाइज कराना पड़ता है कि हाँ आप करिए। मतलब जब वो शमशान से वापस जा रहे थे तो वहाँ पे संगीत सोम नहीं पहुंचा था उस टाइम, उनके अंदर थी ये रेज, उनके अंदर ही पैदा होती है, दे हैव इन इट। तो आपको क्या लगता है सर, वो गांव को छोड़ के उनको डिस्प्लेस होकर शहरों में आ जाना चाहिए, डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, या व्हाट इज योर टेक ऑन दिस?
मुझे लगता है वैसे तो इस पर एक अलग से बहस चलनी चाहिए, गाँव वर्सेस अम्बेडकर और गांधी का, जो दोनों का अपना अपना है। लेकिन एक चीज़ खास ख्याल दीजिए आप कि ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमें लग रहा है कि बहुत सी चीजों का इससे इलाज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्बनाइजेशन दुनिया में जहां हुए हैं उसके बाद भी एथनिक वायलेंस इतने भयंकर हुए हैं, और फिर वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, हमारे पास ज़्यादा हथियार और दूसरे को कुचलने की ज़्यादा कुव्वत पैदा हो जाती है, और उसके बाद पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा बर्बर होकर हमले करते हैं दूसरी एथनिसिटीज पर। तो अर्बनाइजेशन हमारी बर्बरियत को ख़त्म कर देगा ये कोई गारंटी नहीं है। और जहाँ तक रूरल एरियाज के दंगों की बात है, रूरल एरियाज में कम हुए थे अब तक, लेकिन अब मैं रूरल और अर्बन की बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हुआ था कि शहरों में ज्यादा होते थे दंगे, अब तक दंगे जो होते थे, इस बार चिंता की बात यह है कि इस बार गांव में हुए हैं, और गांव में दंगे होने का मतलब है कि अब प्रॉब्लम परमानेंट हो गई है। शहर में एक कत्ल हो, दो कत्ल हो, दस कत्ल हो, भूल जाता है शहर, हफ्ते भर में भूल जाता है, गाँव नहीं भूलता। गांव में कत्ल हुआ मतलब सात पीढ़ियों की दुश्मनी हो गई। तो गांव में अगर डिवाइड हुआ है तो ये मुझे तो लगता है कि देश के डिवीजन तक जा सकती है बात। कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम तो साहब इस कम्युनिटी के साथ रह नहीं सकते मींस देश को बांटोगे, और ये बात ये डिवाइसिव पॉलिसी पॉलिटिक्स वाले जहां पर दलित और नॉन दलित है वहां पर वो, जैसा भाई साहब ने कहा कि फिर वो बड़ी जात को साथ लेकर के, पावरफुल जात को साथ लेकर के फिर वो उसकी पॉलिटिक्स करते हैं कि अच्छा हम दलितों के साथ रह ही नहीं सकते। मैं जाता हूँ जहाँ कई बार दलित बस्तियाँ जलाई जाती हैं, वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ भी यही कि साहब वो एक दलित लड़के ने एक बड़ी जात की लड़की से शादी कर ली इसलिए बस्ती जला दी। बस्ती लड़की से शादी करने पर एकदम से जलाना मुमकिन नहीं है। जब तक आपकी सैकड़ों सालों की नफरत और लगातार उसके खिलाफ जो आपकी नफरत है वो इकट्ठी नहीं हो गई हो, तब तक एक लड़की की शादी करने पर आप जलाते नहीं हैं। और उसका भी मैंने जो एनालिसिस किया था वो यही किया था कि जहाँ दलित और हिंदू वाला मसला है, और आपने अभी अंबेडकर और गांधी की बात जो कही, इस मुल्क में दलित 80% लैंडलेस हैं और उनको ज़बरदस्ती गंदा काम करने पर लगाया गया था कि तुम मरे जानवर उठाओगे, तुम हमारी शिट साफ करोगे, तुम अलग बस्तियों में रहोगे। और ऐसा नहीं हुआ था जैसा कहा जाता है कि साहब ये वर्णाश्रम था और जिसने वेद पढ़ लिया वो ब्राह्मण हो गया और जिसने सेवा का काम किया वो शूद्र हो गया। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी पंडित झाड़ू लगाने से शूद्र नहीं हो जाता और ना ही कोई शूद्र वेद पढ़ने से पंडित हो जाता है। ये असल में अलग अलग रेसेस हैं और इस रेस ने आकर के, जिसको आर्य रेस कहते हैं, उसने मूल निवासियों को गुलाम बनाया और उनसे कहा कि तुम हमारी शिट साफ करोगे, तुम मरे जानवर घसीटोगे, तुम अलग बस्तियों में रहोगे, और रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया। झगड़ा वही रिसोर्सेज पर कब्जे का है।
मैं भाषा से एक बात पूछना चाहूंगी कि आप क्या सोचती हैं कि इसमें ये जो लव जिहाद की बात है, इसमें जो महिलाओं पे जो फोकस है नेगेटिव, ये क्या दिखाता है? हम इस दौर में ऐसा होना हमारे सामाजिक परिवेश में किस चीज़ को उभरने का सिग्नल है?
देखिए, ये बहुत ज़रूरी है इस संदर्भ में समझना, जो मैंने कहा भी कि यहाँ लव जिहाद क्यों इशू बना या क्यों बनाया गया, क्योंकि उनके दिमाग में था कि लव जिहाद या बहु बेटी वाला मामला, बहु बेटी की इज्जत का मामला, क्योंकि जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं, VHP हो, बजरंग दल हो, भाजपा हो, जिस क्लास को, जिस कास्ट को वो एड्रेस कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं, उनके लिए यह प्रेस्टीज का विषय है। आप वहाँ पर
खास उनके लिए या इन जनरल इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी,
क्योंकि ये पेट्रियार्कल कम्युनिटी, यहाँ पे पेट्रियार्की ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे खाप हो जाएगी उस मामले पे, यहाँ पर सो कॉल्ड ऑनर किलिंग्स के वारदात इतनी ज़्यादा हैं, वो सारी कास्ट और कम्युनिटी, ऐसा नहीं कि मुसलमानों में नहीं है, मुसलमानों में भी इसको लेकर खाप होगी और मुसलमानों में भी इसको लेकर कत्ल होगा, क्योंकि एक रिग्रेसिव ट्रेंड पूरे इस सेक्शन में आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपको ये दिमाग में बैठाया गया है कि लव जिहाद यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में। लेकिन लव जिहाद ऑनर किलिंग से फ़र्क है, क्योंकि लव जिहाद में फोकस आपको दूसरी कम्युनिटी यानी मुसलमान के, अगर लव जिहाद का आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो उसमें नफरत फैलाई जाती है, उसमें बताया जाता है, मैंने VHP के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि अरे आप जानती नहीं, लड़के सब स्मार्ट होते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, शहनवाज के बारे में भी बात ये कही जा रही है जिस लड़के को मारा गया, तो वहाँ पे कि और ये जाके लड़कियों को छेड़ते हैं और क्योंकि सुंदर होते हैं और नाम अपने दूसरे बदल लेते हैं, इसलिए हिंदू लड़कियां इनके झांसे में आ जाती हैं और इनसे प्रेम करने लगती हैं। जब प्रेम कर लेती हैं तो हिंदू लड़की तो बहुत ही नैतिक होती है, इसलिए जब वो प्रेम कर लेती है और दिल में उसको पति मान लेती है, इसलिए वो वापस नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि जब पता चल जाता है उसको कि वो मुस्लिम है तो वो तो वापस आ सकती है, कि नहीं नहीं हिंदू लड़की, तो ये जो नफरत का पैमाना है, क्योंकि ये बहुत ईजी है मूव करने का, यहाँ पे आपके दिमाग में ये बहुत आसानी से जहर फैलाया जा सकता है, या इस ये ऐसी सड़क है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और इसमें आप इसको अपनी साइड में या इसका भगवाकरण, इस बेल्ट का आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक तो टूल चाहिए ना, पहले तो राम जन्मभूमि था, क्योंकि जाट राम को हीरो नहीं मानते या राम उनके भगवान नहीं है, अगर आप देखिए तो जाट बेल्ट जो है वो राम पूजक नहीं है, हाँ, तो वो इसलिए राम जन्मभूमि के मुद्दे पे वो सामने नहीं आते, राम मंदिर के नाम पे एक पैसा वहाँ नहीं मिलता, लेकिन लव जिहाद के मामले पे, क्योंकि उनको लगता है कि अरे प्रेस्टीज जा रही है और एक वॉरियर कम्युनिटी होने का जो प्राइड है, दोनों ही साइड से प्राइड है वो, क्योंकि यहाँ पे जो मुसलमान है वो भी एक रूलिंग क्लास को ओन करने का उनके अंदर प्राइड है, पठान है, ऊंची जात वाले मुसलमान है यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर। तो जी
क्योंकि वहाँ जो हुआ है वो देर और 10th of August, ईद का दिन था, और हमने सुना कि सडनली सारे एरिया को कर्फ्यू हो गया, 144 एक्ट हो गया, एंड वी डिड नॉट नो क्या हुआ है. सिर्फ रीज़न था कि कुछ स्लोगन, आधे एक तो कह रहे हैं कि लाइक प्रोसेशन वॉज गोइंग और वो स्लोगन रेस कर रहे थे किसी हिंदू गाँव से गुजरते हुए, जिसकी वजह से वायलेंट हो गए. वो कुछ कह रहे हैं कि हिंदूज ने कुछ स्टोन पेंटिंग कर दी बीच में जाते जाते और सडनली वो वायलेंट हो गया. तो जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद वहाँ नेट सर्विसेज तो सब कुछ बैन कर दिया गया, नेटवर्क वो सब चला गया. अभी तक न्यूज़ में भी फ्लैश नहीं हुआ था और यहाँ तक के जम्मू तक के न्यूज़ पहुँच चुकी थी और वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया था. मतलब तो हिंदू कम्युनिटी अटैक कर रही थी मस्जिद और मदरसों पे, मस्जिद के जो भी लोग थे वहाँ वो अटैक कर रहे थे ऐसे कम्युनिटीज़ के जो डोमिनेटेड एरियाज थे. तो मैम क्या ये प्रीकर्सर था इस सिचुएशन के लिए, और अगर था तो क्या ये रिलेटेड है इससे?
देखिए एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये बात रखी कि अभी अगर आप उठा के देखें सीन जहाँ जहाँ भी कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, जैसे मेहताब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 साल में 100 के करीब कम्युनल टेंशन हुए हैं, जिनको लोग कह रहे हैं कि स्लो लेवल के बम फोड़े गए हैं, हाई लेवल के बम नहीं फोड़े गए. ठीक उसी तरह से अगर आपने जो किश्तवाड़ वाली घटना का बताया, तो आप देखिए कि वहाँ पर लंबे समय से कोशिश हो रही है कि इस तरह का पोलराइजेशन हो, और कश्मीर इस बात की की घाटी इस बात की गवाह है कि जब भी वहाँ नॉर्मलसी थोड़ी थोड़ी आपको लगने लगती है तो इस तरह की वारदात कहीं बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के घटित होती हैं, जिसके बारे में वहाँ जो रह रहे हैं लोग, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, वो प्रीएम्प्ट नहीं कर पाते कि ऐसी वारदात होगी. तो ये जो कम्युनल टेंशन है, ये कम्युनल टेंशन देश भर में, सिर्फ किश्तवाड़ की बात नहीं है, बिहार देखिए बिहार में क्या हुआ. बिहार में जो प्रोसेशन है या जो नागपंचमी वाला प्रोसेशन जिसको लेके नवादा में हिंसा फैली, अगर उस प्रोसेशन की फ़ोटो आप देखें, जो फ़ोटो जिस तरह की झांकी निकाली गई, नवादा के लोगों से आप बात करिए तो लोग बताएंगे कि कभी नागपंचमी पर वैसा प्रोसेशन जिसमें बाकायदा दिखाया हो कि मुसलमान किस तरह से जुर्म ढाता है हिंदू पर, वो झांकी दिखा, हाँ सीतामढ़ी, तो वो इस तरह की इमेजेस कभी नहीं आई. यानी कि हर जगह यह कोशिश हो रही है देश भर में, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि अभी बीजेपी का जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार है उसको सीट चाहने के लिए उत्तर प्रदेश, खास तौर पे हम इसलिए उत्तर प्रदेश पे फोकस किए कि जब तक वो उत्तर प्रदेश से फोकस नहीं करेगा, सीट नहीं अपने हिस्से में लाएगा, तब तक वो पोलराइजेशन नहीं हो सकता. लेकिन वो पोलराइजेशन और जगह पर भी है. बिहार के लोगों से बात करिए, जो लोग यहाँ बिहार के दोस्त होंगे वो बताएंगे कि लो लेवल टेंशन वहाँ हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एग्जिस्ट कर रहा है, और वो एग्जिस्ट करने के लिए एक तरह का नेटवर्क है. जैसे यहाँ पर लोग बताते हैं कि 10-15 नौजवान लड़कों को की नियुक्ति की गई जो खाली यही देखेंगे कि कहाँ पर किससे लड़ाई हो रही है और उस टेंशन को कैसे प्लेयरअप किया जा सकता है. तो एक ऑर्गेनाइज्ड मूव तो देश भर में है, और निश्चित तौर पे चाहे वो बिहार की घटना हो या किश्तवाड़ की घटना हो, वो इसी सीक्वेंस में हमें दिखाई देती है.
एक्सक्यूज मी, वो आई हैव रेड इन द एपीडब्ल्यू एडिटोरियल दैट देयर इज एक बेस ऑफ कास्ट आल्सो इन दिस इनसाइड दिस दैट इज मुस्लिम जाट्स वर आल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस कम्युनल राइट्स एंड एवरीथिंग. सो इज देयर एनी दैट्स
इंटरेस्टिंग मुस्लिम
those who were jazz inside the Muslims itself, they were protected from the riots.
From the riots.
Yes, they were protected by the Hindu jazz. The Muslims jazz were protected.
So, high caste Hindu.
देखिए हाँ, ये जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि जिन इलाकों से हिंसा शुरू हुई, यहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम भागे या घर जलाए गए, वहाँ तो 5 गांव अगर आप लीजिए तो 5 गांव में कोई घर ऐसा नहीं है जो नहीं जलाया गया हो. लेकिन निश्चित तौर पर इसका एक कास्ट एंगल के साथ साथ, क्योंकि वो लैंड ओनर्स हैं और उनके पास भागने का, लेकिन आज की तारीख में जितने लोग बाहर हैं, मान लीजिए 165 गांव अगर हमारे सामने हैं, 162 गांव की स्थिति हमारे सामने है, तो 162 गांव जो लोग बाहर हैं वहाँ पर कम्प्लीट बाहर हैं. बहुत कम ऐसे गांव बचे हैं या वो गांव में ऐसे लोग बचे हैं जहां पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, जैसे मुझेड़ा गांव या पूरी जो बेल्ट है जहां पर जौली के पास वाली बेल्ट है, वहां आपको लोग मिलेंगे जहां डोमिनेशन है उनका, मतलब जहां आप मेजॉरिटी में हैं. तो ये कोशिश ज़रूर है. मुलायम ने जैसे कहा कि इट इज़ नॉट अ कम्युनल वायलेंस, इट इज़ अ कास्ट वायलेंस, लेकिन जब आप नेचर देखिए वहाँ पर जाके, तो डेफिनेटली अगर कास्ट वायलेंस है तब तो फिर वो बाकी कास्ट, हिंदू कास्ट भी एक विक्टिम होना चाहिए था, वो विक्टिम ग्राउंड पे नहीं दिखाई देता, लेकिन लैंड ओनर्स डेफिनेटली, जहां पर लैंड ओनर्स होंगे दे विल बी मोर प्रोटेक्टेड और टू मस्ट हैव मूव टू मोर सिक्योर्ड प्लेस.
यू आर रेफरिंग टू द हिलाल अहमद राइटिंग, तो उसमें ही इज बेसिकली ट्राइंग टू से दैट इट्स बेसिकली जाट वर्सेस पसमांदा. सो दैट इज हिज पॉइंट. बट इफ यू सी टू ऑफ द मुस्लिम कोट एंड कोट मुस्लिम लीडर हु इज बीन अक्यूज इन द इंसाइटिंग वायलेंस आर फ्रॉम पसमांदा कम्युनिटी. टेक याकूब कुरैशी and this Qadir Rana, the BSP MP. So I think Hilal's argument is, I mean, I would not say that it's a problematic kind of, I mean, we should wait to see the, I mean, because there are things which is yet to be reported. So, I mean, this is a kind of premature kind of argument he is giving.
You know, it's always a complex situation because you don't have to be of a particular caste to represent that caste or the interests of that caste.
Of course.
You know, so you could be a Pasmanda, but you could be representing the Jats among the Muslims.
Totally agree.
So, you know, there is, it's a complex.
But if you read that article, that's very, I mean, he's talking in terms of black and white.
I should read it before I comment.
I have a question. Even if the news about the communism is presented in an unbiased manner by the media, it's a trick situation. मतलब एक जगह पे अगर बताया जा रहा है कि 70,000 Muslims have been displaced and are homeless, there will be a population that will take it as a rage. तो इस स्टिग्मा से निकलने का क्या तरीका हुआ? क्योंकि एक तरफ से वो ऑलरेडी कम्युनलिज्म चला रहे हैं, वो दबा दिया जाए तो एक प्रॉब्लम हुई कि बताया नहीं गया, और वो बता दिया जाए तो एक प्रॉब्लम हुई कि कुछ लोग मानेंगे कि ये मुस्लिम के खिलाफ ही हो रहा है. तो ये स्टिग्मा कैसे ब्रेक
कैसे
इवन इफ द मीडिया इज अनबायस्ड, देयर विल बी अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन व्हिच विल बी एग्रेवेटेड. एंड ये फिर चेन प्रोसेस बनता जाएगा एंड कम्युनलिज्म फिर बढ़ता ही जाएगा. तो इसका क्या ब्रेक थ्रू क्या है, कोई तरीका है?
देखिए, गुजरात से पहले भी ये चीज बहुत
जवाब उसमें क्या कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर कुछ हिंदू ने मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट किया है, और मेरे ख्याल में वो भी रिपोर्ट का एक हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं डबल विक्टिम हैं. एक तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, और जो उनके अपने कम्युनल साथी हैं वो उनको एक्यूज भी करेंगे कि भाई आप ये काम कर रहे हैं. तो आई नीड दैट वी शुड सी समवेयर द हीरोज शुड बी वन.
ये आपकी बात बहुत सही है, और यहाँ पर ये ज़रूर हमें दिमाग में रखना भी चाहिए कि जितने राहत शिविर चल रहे हैं, इंक्लूडिंग लोनी, सारे राहत शिविरों में दोनों कम्युनिटीज़ ही हेल्प कर रही हैं. और जो मैं 10,000 या 12,000 की तादाद में जो बता रही हूँ कि जो राहत शिविर चल रहा है खुले आसमान में, वहाँ रात में 1:30 बजे पहुँचिए या 2 बजे पहुँचिए, तो प्रोटेक्ट करने वाला पुलिस नहीं है वहाँ पर, वहाँ पर मेडिकल कोई नहीं है, वहाँ पे जो लोग गांव के हैं, जो कि जिस समय हम पहुँचे वहाँ पर वो सारे हिंदू थे, उसी गांव के थे, और वही वहाँ पे रोज़ रात में पहरेदारी कर रहे हैं कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो. तो इस तरह, क्योंकि इसीलिए वो लोग बचे भी हुए हैं निश्चित तौर पे. ये एक ये बहुत खास और ज़रूरी बात है कि जिसको हमें याद रखना चाहिए. और यही एक गांव और शहर का अंतर है, जिसको अभी हिमांशु भी रख रहे हैं, कि गांव में जब दंगा फैलता है या कंधमाल का जो उन्होंने जिक्र किया, वो हमें इसलिए भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि वहाँ पर जब नफरत या प्रेम है वो बिल्कुल ऑल ऑफ सडन कट ऑफ नहीं हो रहा है. शहरों में तो ऑल ऑफ सडन कट ऑफ हो रहा है.
और इससे ये भी साबित होता है कि ये कहीं से मैन्युफैक्चर किया गया है. जो लोगों की अपनी जो फीलिंग्स हैं और जो उनके तौर तरीके हैं, उसमें सामंजस्य है, सद्भावना है, प्रेम है, लेकिन कहीं कुछ एक्सटर्नल इन अ वे, चाहे वो VHP का हो या कुछ, किया जा रहा है लोगों के बीच.
हाँ,
जिसका नतीजा ये है
जो कि एक लंबे समय की तैयारी
आती है कि अगर,
और जो आप बात कह रही हैं कि रिपोर्ट किया जाए तो क्या होगा, ये सवाल मेरे ख्याल से 2002 की जेनोसाइड के बाद एक तरह से सेटल्ड है. एक तरह से सेटल इसलिए है कि सवाल ये है कि पहले जैसे रिपोर्टिंग में सिखाया जाता था और आज भी कुछ लोग लिखते हैं कि क्लैश बिटवीन टू कम्युनिटीज, ठीक है, आप हिंदू मुस्लिम नहीं लिखते, आप ये नहीं लिखते कि दलित को जाट ने मारा, जाट को दलित ने मारा, हाँ, गोहाना के बारे में आपको बताया जाएगा कि आप ये मत लिखिए कि दलित की बस्ती जली, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल आज की तारीख में जो रियलिटी है, यह रियलिटी से झूठ बोलना हुआ। अगर हम ये नहीं लिखेंगे कि गोहाना में दलितों के घर जलाए गए, दलितों की बस्ती उजाड़ी गई, तो यह सच नहीं होगा। और दूसरे माध्यमों से जिस कम्युनिटी में वो मैसेज जाना है वो चला जाएगा। जैसे गुजरात के समय हुआ कि गुजरात के समय हम सच लिखें कि ना लिखें, बिल्किस का सच लिखें कि ना लिखें कि उसके साथ रेप हुआ, वो एक आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं आज़ाद भारत में, आज भी एक गुप्त जगह पर है, उसके बारे उससे कोई अप्रोच नहीं कर सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन उसको जान का इतना खतरा है कि कोई स्टेट पावर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती कि वो। तो ये जो सच है, मान लीजिए अगर हम ये सच ना लिखें कि 70,000 मुसलमान बाहर है, अगर हम ये ना लिखें कि इतने बड़े पैमाने पर गैंग रेप्स हुए, तो यह क्या उस गैंग रेप विक्टिम के साथ न्याय होगा? जब हम 16 दिसंबर पर इतना हंगामा करते हैं, तो हम खुर्शीदा या बाकी लोगों पर क्यों हंगामा नहीं करें इतना कि जिन लोगों ने गैंग, क्योंकि हम तब न्याय की प्रक्रिया से मीडिया को बाहर कर देंगे, तब हम ये उस कम्युनिटी में ये भरोसा भी नहीं दिला पाएंगे कि उसका दुख रिपोर्ट होगा। क्योंकि अगर रिपोर्ट नहीं होगा तो कोई प्रेशर FIR दर्ज कराने तक पे नहीं पड़ेगा, कोई प्रेशर इस बात पे नहीं पड़ेगा कि वहाँ की क्या सच्चाई है। और बड़ी मज़ेदार बात है कि जो स्टेट पावर की हम बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा जंगल की ज़मीन पर चल रहा है राहत शिविर, वहाँ पर उस राहत शिविर के खिलाफ ही वहाँ की UP सरकार ने मुकदमा ठोक रखा है, ये कहते हुए कि इन लोगों ने 300 लोगों पे FIR है वहाँ पर, कि इन लोगों ने जंगल की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और वो इसे हड़पना चाहते हैं। तो अगर ये हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो एक प्रेशर भी इस अन्याय के खिलाफ हम नहीं बिल्ड कर पाएंगे।
मुझे एक चीज़ ऐड करना है। मुझे लगता है इनके सवाल के दो हिस्से थे, एक हिस्से को भाषा ने एड्रेस किया है। मुझे लगता है दूसरा सवाल जो ये था कि रिपोर्ट करते हैं तो फिर एक विक्टिमहुड, सेंस ऑफ विक्टिमहुड पैदा हो जाता है, हाँ वो केस कैसे ब्रेक हो। मुझे लगता है ये सवाल बहुत अहम है, ये गुजरात के वक्त भी हुआ और हमेशा होता है, और ख़ास तौर पर क्योंकि मुसलमानों को ये लगता है कि इस देश में अगर जुल्म हो रहा है तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, या दलितों को ये लगता है कि इस देश में अगर जुल्म हो रहा है तो दलितों के खिलाफ हो रहा है, आदिवासियों को ये लगता है। तो मुझे लगता है यहीं पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू वर्क amongst your or for your community, but it's also important to work all those who are oppressed. तो मुझे लगता है यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इस वक्त जब हिमांशु कुमार आदिवासियों की बात कर रहे थे तो मकसद यही था कि इस देश में जो हुआ, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि जो 2002 में मुसलमानों के साथ गुजरात में हुआ, हम तब पैदा नहीं हुए थे, लेकिन दिल्ली में और दूसरी जगहों में 1984 में जो कुछ हुआ वो सिखों के साथ हुआ था। तो इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल। तो इसलिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी बात करें, लेकिन जब वो बात कर रहे हैं तो उसी वक्त आप ये भी देखें कि इस देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इस देश में दलितों के साथ क्या हो रहा है, इस देश में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, इस देश में और जो दूसरे वंचित, ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। मुझे लगता है
आइडेंटिटी को इतना इम्पोर्टेंस अगर न दी जाए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन या इनजस्टिस अक्रॉस वेरियस आइडेंटिटीज, आई एम नॉट सेइंग आइडेंटिटीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू नो टू हाईलाइट द आइडेंटिटी बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिंकिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ injustice and exploitation.
उसके एक मिनट, उसके दो फायदे हैं जो मुझे दिखता है। एक तो you'll be able to get out of your victimhood, sense of victimhood, and the second you'll be able to a kind of broader solidarity.
Yes.
हाँ, तो उसमें आपको एक बड़ा दायरा बना सकेंगे जिसमें लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, तो थोड़ी आपको ताकत भी मिलेगी और दूसरों को भी लगेगा, तो आपकी ताकत भी बढ़ेगी और आप जिस उसमें रह रहे हैं, विक्टिम मूड में रह रहे हैं, वो भी निकल पाएगा। तो आपकी पॉलिटिक्स रिएक्शनरी से जाके कंस्ट्रक्टिव अफर्मेटिव काइंड ऑफ की पॉलिटिक्स हो पाएगी। इसलिए दूसरे के साथ लिंक करके, इसलिए हम लोग जब कहते हैं ना कि भारत में जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन देश में मतलब दुनिया में और जो लग रहा है उससे, सो थिंक ग्लोबल, थिंक लोकली, एक्ट लोकली एंड थिंक ग्लोबली, तो वो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है. मुझे लगता है कि आप कई सवाल पूछ चुके हैं, तक कुछ और लोगों को जब मौका दीजिए तो ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो पूछ चुके हैं वो दूसरों को मौका दे, बाकी बाहर भी पूछ सकते हैं.
मेरा क्वेश्चन किसी एक से नहीं है, सबसे है जी. और
प्लीज आप तीनों ही इसका जवाब दें.
एक जो आपने बात कही वो इसलिए जरूरी है कि हम मतलब उससे मैं थोड़ा सा ना इत्तेफाक रखती हूँ. नहीं नहीं, एक चीज मैं खाली, एक जहाँ आपने कंक्लूड किया, जरूरी सवाल है, बहुत बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन आज की तारीख में या किसी भी दौर में ये मान लेना कि जो हुआ वो हो चुका. हम अभी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो अभी चल रहा है हमारे समाज में. इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं उस समय की भी सच्चाई है, कल आने वाले की भी सच्चाई है. इसमें इंटरवीन कैसे किया जा सकता है या आप कैसे हस्तक्षेप अपने तय कर सकते हैं, क्या वहाँ पर जाके कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं, या जहाँ पर आप पढ़ रही हैं, जहाँ पर आप रह रही हैं, वहाँ पर आप कैसे इंटरवीन कर सकते हैं. पहला मुझे लगता है जो मैंने रखा भी कि बीइंग अ स्टूडेंट हम किस तरह से जो वायलेंस चल रहा है इसे एक हम कम्युनल टेंशन या कम्युनल वायलेंस को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हुए इसके बारे में जो नफरत है, क्योंकि नफरत ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजफ्फरनगर में है, नफरत दिल्ली में भी उतनी ही है, कई बार और ज़्यादा है. डिफरेंट जो मेहताब बोल रहे हैं कि चाहे वो दलितों के प्रति हो, चाहे वो गरीबों के प्रति हो, चाहे वो वुमेन के प्रति हो, ये जितने जो मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड आइडेंटिटीज़ की हम बात कर रहे हैं उनके प्रति है. वहाँ हम इंटरवीन कैसे करें, क्या हमें ये लगता है कि जो बगल के सच है हमारा उसके बारे में हम आज अगर हम बात करें. एक अभी यहाँ पर बताया कि यहाँ से भी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गई हुई है, शायद आपकी यूनिवर्सिटी से भी गई हुई है जो वहाँ पर काम कर रही है. सच को भी बाहर लाना या सच को सबके सामने उसी तरह से फैलाना जिस तरह से झूठ को फैलाया जा रहा है, क्योंकि आप जब पढ़ रही हैं जिस दौर में उस समय झूठ का डंका सबसे तगड़ा है. उस झूठ के डंके के बरक्स अगर हम जो सच है आज के दौर का उसे किस तरह से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो पोलराइज सोसाइटी हो रही है इसके खिलाफ हम अपने सोशल नेटवर्किंग साइट, मेल, फेसबुक आदि में इंटरवीन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट कर रहे हैं उनके साथ हम एसोसिएट होकर कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं कि नहीं. मैं आपको बताऊं कि जब मैं गई थी तो हमारे साथ तकरीबन 24 लोगों की टीम थी जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर लड़कियाँ थी जो पढ़ रही हैं लॉ अभी. उनको नौशाद हैं, उन्होंने कहा था कि आप डॉक्यूमेंट करिए. उन लोगों को चक्कर आ रहा था क्योंकि वो सब दिल्ली की बच्चियां हैं, छोट बहुत कम उम्र की, आप ही की उम्र की बच्चियां हैं सारी. इस तरह का सेक्सुअल वॉयलेंस या इस तरह का हेट्रेड वाला वॉयलेंस उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया था. तो वो जब आके सेमिनार में बोली, यहाँ पर बोली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, तो उनके लिए पूरी दुनिया का फलक ही बदल गया. उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि थोड़ी देर के लिए जाएंगे, वो कपड़े वपड़े भी नहीं लेके गई थी. उन्होंने सोचा कि सुबह जा रहे हैं शाम को वापस आ जाएंगे. दिल्ली में रहने वाले बच्चों को ये पता भी नहीं होता ना कि सड़कें कैसी हैं. उन्होंने नेट पे देखा कि किलोमीटर इतना है, अच्छा इतने घंटे की रफ्तार से जाएंगे, इतने घंटे के वापस आ जाएंगे. जब वहाँ पहुँचने में रात होने लग गई तब उनको लगा कि अरे ये तो ऐसी दुनिया बिल्कुल बगल में है हमारे. तो ये सारे फॉर्म्स हमें क्रिएटिव फॉर्म्स ऑफ इन्वॉल्विंग डायरेक्टली टू द रियलिटी. निश्चित तौर पे बीइंग अ स्टूडेंट आई थिंक यू हैव टू एक्सप्लोर, द ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू एक्सप्लोर टू डायरेक्टली हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ what is happening at the time when you are studying. I think that's very important.
I think we have to conclude now.
One more question.
Yes, okay.
सांप्रदायिकता से जब हम इकोनॉमिक फैक्टर को जोड़ के देखें, खासकर अर्बन सेटिंग में जब हम देखते हैं, तो जैसे जर्मनी में कहा जाता था कि ज्यूस हमारी नौकरी खा रहे हैं, इसलिए उनको एक फैक्टर था. तो यहाँ पे क्या अर्बन इकोनॉमिक फैक्टर अर्बन सेटिंग में कितना रोल प्ले कर रहा है? आज हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो स्कूल में थे, अब वो हमसे बात करते तो कहते हैं कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, तुम्हारा क्या है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी. और रियल स्टेट में भी शहरों में दिखता है, वो चीज़ दिखती है कि अपार्टमेंट के नामकरण जो होते हैं, अगर सनराइज अपार्टमेंट होगा तो हिंदू मुस्लिम दोनों को इंटरेस्ट आएगा, अगर नाम होगा सनराइज अपार्टमेंट. मैंने कई जगह देखा है कि अपार्टमेंट बन रहे हैं वहाँ पे, तो पूरा वहाँ पे एक भगवा झंडा पूरा तारुक लगा दिया गया है. तो वहाँ पे एक मैसेज आता है कि एक कम्युनिटी के लिए खास करके आप नहीं ले सकते अगर चाहे वहाँ पर मकान. तो इकोनॉमिक फैक्टर जो है अर्बन सेटिंग में कितना रोल प्ले कर रहा है?
देखिए, ये मुझे लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ी इंक्रीज़ भी कर रही है आज के दौर में. जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ रहा है, चाहे वो नौकरियों का हो, अपॉर्चुनिटीज़ का हो, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन का हो, क्योंकि रिसेशन का दौर है, नौकरियां हैं नहीं, सरकारी नौकरियों पर बैन है, इसलिए देखिए नफरत बहुत तगड़ी है. दिल्ली के बच्चों से बात करिए, यूनिवर्सिटीज़ में बात करिए, तो लोग कहेंगे अरे यहाँ क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमें तो कोई कास्टिज़म में तो हम विश्वास नहीं करते, हम तो किसी भी रिलीजन के प्रति कोई एपैथी हमारी नहीं है. उनसे पूछे कि अच्छा आपके दोस्त कितने हैं, बाकी कितने हैं, तो लेकिन अंदर एक ये फीलिंग ज़रूर बैठी हुई है. जैसे अभी मान लीजिए जो हम जिस इलाके की मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि यूपी सरकार मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही थी, लैपटॉप दे रही थी, मुस्लिम बच्चियों की शादी के लिए 30,000 रुपये दे रही थी, हिंदू लड़की की शादी के लिए 20,000 रुपये दे रही थी. तो ये जो सारी फीलिंग है हेट्रेड की, क्योंकि आपके पास अब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और उसमें सबसे
इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन है,
तो उसमें बहुत तगड़ा
इंडिया वर्ल्ड ओवर दैट इज गिविंग राइज टू सच फिनोमेना एंड राइट विंग टेंडेंसीज एंड यू नो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ दिस काइंड.
हां
उसमें द बेस एंड द क्लासिक केस इफ यू वांट टू टेक द शिवसेना and the rise of Shiv Sena in Maharashtra is entirely because of economic thing. कि किस तरह से कि मद्रासी हमारी पूरी वो खा रहे हैं पहले
jobs.
हाँ jobs खा रहे हैं मद्रासी, फिर वो मुसलमानों पर शिफ्ट हुआ, then now बिहारी, और you take the recent clash in Assam कि बिहार in Bangladesh. तो ये जो of course relation, और वो communalism भी ही नहीं, regionalism भी, और क्योंकि there are different kind of वायलेंस विच इज हैपनिंग अराउंड, तो इसलिए उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो है ही.
लास्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. I'm not asking anybody, they're just, you can discuss now. Please come for tea.
Oh, sorry.
Chai ke liye aayega.
Haan, ji, bilkul.
Ye kisi ka recorded hai yahan?
Haan, ye. Thank you.